एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करते हैं ग्रंथसार, विश्व की श्रेष्ठ कृतियों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ग्रंथसार में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी कृति पर बात करने वाले हैं जिसने अमेरिकी साहित्य पर कह सकते हैं एक बहुत गहरा निशान छोड़ा।
हाँ, लेकिन साथ ही काफी विवादों को भी जन्म दिया अपने समय में।
बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं विलियम स्टायरन के 1967 की उपन्यास द कन्फेशंस ऑफ नेट टर्नर की। इसे 1968 में पुलित्जर पुरस्कार भी मिला था।
जी, जो इसके साहित्यिक महत्ता तो दिखाता ही है।
हाँ, विलियम स्टायरन वो खुद 20वीं सदी के काफी प्रभावशाली अमेरिकी लेखक थे। वर्जीनिया से थे, दक्षिणी अमेरिका से, और उनकी लेखनी में अक्सर ये चीजें दिखती हैं, नैतिक दुविधाएं, अपराध बोध, मानवीय पीड़ा और इतिहास के वो कड़वे सच जिनका सामना करना मतलब आसान नहीं होता।
हाँ, जैसे उनकी एक और मशहूर किताब है सोफीज चॉइस, शायद कुछ लोगों ने पढ़ी हो।
सही कहा। और द कन्फेशंस ऑफ नेट टर्नर उस दौर में आया जब अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन चल रहा था, काफी उथल पुथल थी।
जी,
और ये उपन्यास आधारित है 1831 में वर्जीनिया में हुए एक ऐतिहासिक दास विद्रोह पर, जिसका नेतृत्व नेट टर्नर नाम के एक पढ़े लिखे गुलाम ने किया था।
हाँ, ये जानना जरूरी है कि ये सिर्फ इतिहास नहीं है।
नहीं, बिल्कुल नहीं। स्टायरन ने इसे नेट टर्नर के नजरिए से लिखा है, फर्स्ट पर्सन में, जैसे वो खुद अपनी कहानी सुना रहा हो।
जेल की कोठरी से जब वो अपनी फांसी का इंतजार कर रहा है।
हाँ, स्टायरन ने खुद इसे कहा था इतिहास पर एक ध्यान, मतलब मेडिटेशन ऑन हिस्ट्री।
सही, तो ये असल में एक तरह का मनोवैज्ञानिक अन्वेषण है उन घटनाओं का, उस सोच का जो नेट टर्नर को विद्रोह तक ले गई।
बिल्कुल, तो आज हमारा मकसद यही है कि इस जटिल, मतलब बहुस्तरीय और यकीनन विवादित उपन्यास की कहानी, उसके किरदारों और इसके जो गहरे विषय हैं, उनको थोड़ा टटोले, उनकी पड़ताल करें।
हाँ, चलिए कोशिश करते हैं इसकी पड़तें खुलने की।
तो कहानी हमें ले जाती है सीधे 1831।
जी
वर्जीनिया, साउथहैम्पटन काउंटी।
जी
ये अमेरिका के गृहयुद्ध से पहले का दक्षिण है, जहां गुलामी की जो क्रूर व्यवस्था थी उसने पूरे समाज को जैसे जकड़ रखा था। और स्टायरन ने वो माहौल बहुत बहुत कुशलता से रचा है, एक दमनकारी माहौल, हवा में जैसे हर वक्त एक तनाव महसूस होता है।
हाँ, उत्पीड़न की घुटन।
बिल्कुल, और शायद कहीं दबे हुए दैवीय प्रतिशोध की आहटें भी, जैसे सब कुछ किसी आने वाले तूफान का इंतजार कर रहा हो।
और उपन्यास का ढांचा भी, जैसा आपने कहा, काफी खास है। नेड जेल में है और अपनी कहानी सुना रहा है एक वकील को, थॉमस आर ग्रे।
हाँ, जो उसकी स्वीकारोक्ति दर्ज करने आया है। और इसी बातचीत से कहानी फ्लैशबैक में खुलती है।
जी, नेट की यादें, उसके अनुभव, उसके अंदर का जो संघर्ष है, वो सब परत दर परत सामने आता है।
और यहीं पर मुझे लगता है उपन्यास का असली द्वंद है।
हाँ, ये सिर्फ बाहरी विद्रोह की कहानी नहीं है, मतलब गोरे मालिकों के खिलाफ हथियार उठाने की
नहीं,
उससे कहीं ज्यादा ये नेट टर्नर के अपनी अंदर जो एक भयानक लड़ाई चल रही थी उसकी कहानी है।
उसकी आस्था और हिंसा के बीच का टकराव।
बिल्कुल, उसकी गहरी धार्मिक आस्था एक तरफ और दूसरी तरफ गुलामी की जो बर्बर सच्चाई थी, उससे पैदा हुई हिंसा की भावना, ये उस मनोवैज्ञानिक दबाव का चित्रण है जो गुलामी इंसान पर डालती है। और मूल सवाल यही है कि ईश्वर में इतनी आस्था रखने वाला, बाइबल जानने वाला इंसान,
हाँ,
आखिर कैसे, किन हालात में वो खून खराबे के रास्ते पर चल पड़ता है। ये जैसे ईश्वर के बंदे से एक विद्रोही बनने का सफर है।
हाँ, और नेट टर्नर का चरित्र वो इस उपन्यास का सबसे मजबूत और शायद सबसे जटिल पहलू है।
सही कहा।
स्टायरन ने उसे किसी एक खांचे में नहीं डालते, ना हीरो ना विलन, वो असाधारण है।
उस जमाने के हिसाब से तो बहुत पढ़ा लिखा गुलाम होना ही अपने आप में,
हाँ, अत्यंत दुर्लभ था।
वो बहुत बुद्धिमान है, गहरा धार्मिक है, बाइबल जैसे उसकी दुनिया का केंद्र है। उपन्यास उसके बचपन को दिखाता है जहां उसे अक्सर दूसरों से अलग महसूस होता है। शायद उसके ज्ञान की वजह से उसे कुछ लोग भविष्यवक्ता जैसा भी मानते थे। जी, वो अकेला सा है, अपने ही विचारों में रहता है, और जब वो पढ़ना सीख लेता है तो बाइबल उसके लिए सिर्फ किताब नहीं रहती, दुनिया को समझने का जरिया बन जाती है।
बिल्कुल, और शुरू में उसका जो पहला मालिक था सैमुअल टर्नर, वो थोड़ा उदार माना जाता था।
हाँ, तो नेट को शायद उससे कुछ उम्मीदें भी थी, आजादी की एक धुंधली सी आस।
जी, लेकिन यहीं वो अंदरूनी लड़ाई शुरू होती है। एक तरफ ईसाई धर्म की बातें हैं, प्रेम, क्षमा,
सहिष्णुता,
हाँ, और दूसरी तरफ गुलामी की रोज की क्रूरता है, अपमान है, अमानवीयता है,
तो उसके मन में नफरत बढ़ती जाती है
और ये विश्वास भी कि शायद इस व्यवस्था को उखाड़ने के लिए हिंसा ही रास्ता है।
सोच सकते हैं कि कैसा मानसिक तनाव होगा, एक तरफ बाइबल
और दूसरी तरफ गुलामी की जंजीरें।
और इसी तनाव के बीच कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है, एक विश्वासघात।
हाँ, वो सैमुअल टर्नर वाला
जिसने नेट की दुनिया ही बदल दी।
बिल्कुल,
सैमुअल टर्नर जिससे नेट को मतलब एक उम्मीद सी थी, शायद एक अलिखित वादा सा महसूस होता था आजादी का।
हाँ, शायद एक गाइड की तरह देखता
हो सकता है, लेकिन वो अपनी कुछ आर्थिक परेशानियों की वजह से नेट को बेच देता है। और ये नेट के लिए सिर्फ मालिक का बदलना नहीं था, ये तो बहुत गहरा सदमा था, भावनात्मक भी, मनोवैज्ञानिक भी।
जैसे गोरे लोगों की अच्छाई पर जो थोड़ा बहुत विश्वास बचा था वो भी टूट गया।
हाँ बिल्कुल, मोह भंग जो अब कड़वाहट बन गया, गहरा अविश्वास बन गया।
और इसके बाद के मालिक तो और भी क्रूर निकले, रेवरेंट एपिस जैसे।
जी, उनके नीचे तो उसने गुलामी की और भी भयानक बर्बरता देखी, और इसी दौरान उसकी आस्था का रूप भी बदलने लगता है।
कैसे?
वो पहले से ज्यादा, कह सकते हैं, अंधकारमयी होती जाती है, ज्यादा भविष्य सूचक, प्रलयंकारी।
उसके दिव्य दर्शन भी उग्र हो जाते हैं।
हाँ बिल्कुल, और कहानी में एक खास पल आता है जब वो कुछ वक्त के लिए भागकर जंगल में छिप जाता है। वहां उसे एक बहुत शक्तिशाली दर्शन होता है। उसे लगता है ईश्वर कह रहा है, अपना क्रॉस उठाओ, अपने लोगों के लिए लड़ो।
तो ये वो पल है जब मिशन बदल जाता है व्यक्तिगत मुक्ति से,
हाँ, एक बड़े दैवीय प्रतिशोध के संकल्प में।
जैसे
आशा की जो आखिरी लौ थी वो बुझ गई
और उसकी जगह प्रतिशोध की ज्वाला भड़क उठी।
बिल्कुल, ये सिर्फ बाहरी हालात का बदलाव नहीं था, ये उसके मन का, उसकी आत्मा का रूपांतरण था।
हाँ, एक गहरा मनोवैज्ञानिक मोड़ था ये। और इस बदलाव के बाद नेट खुद को ईश्वर का एक चुनावा हथियार समझने लगता है।
जी, एक भविष्यवक्ता, एक सेनापति जिसे ईश्वर ने भेजा है गुलामी से आजादी दिलाने के लिए, एक पवित्र युद्ध लड़ने के लिए।
वो पुराने टेस्टामेंट के नबियों की तरह खुद को देखने लगता है।
हाँ, अब उसका पूरा ध्यान विद्रोह की तैयारी पर है। वो धीरे धीरे छुपकर अपने अनुयायी जमा करता है,
जैसे हर्क या हर्क्यूलीज।
हाँ, जो शारीरिक रूप से मजबूत था, नेट के प्रति वफादार था, और ये सब मिलकर ईश्वर के इशारे का इंतजार करते हैं।
और वो इशारा मिलता है फरवरी 1831 के सूर्य ग्रहण से।
बिल्कुल, नेट उसे ईश्वर का आदेश मानता है कि अब कार्रवाई शुरू करो। इस पूरे समय में एक अजीब सा शांत पर अंदर ही अंदर सुलगता हुआ तनाव है।
और यही स्टैन कहानी में वो विवादास्पद पात्र लाते हैं, मार्गरेट व्हाइटहेड।
हाँ, एक युवा मासूम श्वेत महिला। स्टैन उसे लगभग एक पवित्रता के प्रतीक की तरह दिखाते हैं।
और नेट के मन में उसके लिए बहुत जटिल भावनाएं हैं, प्रशंसा भी हैं,
एक तरह की आध्यात्मिक कशिश भी, और शायद दमित इच्छा भी।
और ये पात्र पूरी तरह काल्पनिक है।
यहीं से वो आरोप शुरू होते हैं इतिहास को तोड़ने मरोड़ने के।
जी,
मार्गरेट व्हाइटहेड नेट के अंदरूनी संघर्षों का, उसकी दमित भावनाओं का, शायद गोरी दुनिया के प्रति उसके नजरिए का प्रतीक बन जाती है। और ये उपन्यास का सबसे ज्यादा बहस वाला हिस्सा है।
हाँ, मार्गरेट का पात्र बहुत अहम है उपन्यास में और विवादों में भी। खैर, तो संकेतों के बाद आखिरकार अगस्त 1831 की वो रात आती है, विद्रोह का दिन,
जिसे नेट शायद न्याय का दिन समझ रहा था।
योजना क्या थी?
योजना बहुत क्रूर थी, खेत दर खेत जाना, सभी श्वेत पुरुषों, महिलाओं, बच्चों को मार डालना।
मकसद?
आतंक फैलाना, श्वेत समुदाय को डराना, और उम्मीद थी कि इससे दूसरे गुलाम भी उठ खड़े होंगे, एक बड़ा विद्रोह शुरू होगा।
लेकिन स्टाइरन का ध्यान सिर्फ हिंसा दिखाने पर नहीं है।
नहीं, बिल्कुल नहीं, वो हमें लगातार नेट के अंदर ले जाते हैं, उसके मन में क्या चल रहा है।
जैसे जब पहली हत्या का मौका आता है।
हाँ, नेट हिचकिचा जाता है, उसका हाथ कांपता है, वो पहला वार कर ही नहीं पाता।
पहला कत्ल कोई और करता है।
जी, और उस पूरी रात और अगले दिन की मारकाट में भी नेट अक्सर एक हत्यारे से ज्यादा एक आध्यात्मिक नेता जैसा लगता है। वो अनुयायियों को ईश्वर के नाम पर उकसाता है, आगे बढ़ाता है, पर खुद खून बहाने में जैसे एक अंदरूनी संघर्ष महसूस करता है, जैसे तलवार हाथ में तो है पर चलाने में आत्मा कांप रही है।
और विद्रोह का चरम बिंदु
वो तब आता है जब विद्रोही व्हाइटहेड फार्म पर पहुंचते हैं, जहां नेट का सामना मार्गरेट व्हाइटहेड से होता है।
ओ।
और वहां एक बहुत ही दर्दनाक, भयानक पल में नेट खुद उसे मारता है।
ये तो बहुत ही दिल दहलाने वाला दृश्य होगा।
हाँ, ये उसके मिशन, उसके जुनून, उसके अंदर के सारे विरोधाभासों की जैसे एक विनाशकारी परिणति है, जैसे उसने अपनी ही बनाई दुनिया की आखिरी कोमलता को खत्म कर दिया हो।
लेकिन विद्रोह ज्यादा चला नहीं?
नहीं, स्थानीय मिलिशिया, हथियारबंद गोरे नागरिक, वो जल्दी ही संगठित हो गए।
और नेट के मुट्ठी भर लोग टिक नहीं पाए?
बिल्कुल, विद्रोह कुचल दिया गया। नेट किसी तरह भागा, लगभग 6 हफ्ते छिपा रहा
दलदलों में।
हाँ, लेकिन आखिरकार पकड़ा गया।
और कहानी वापस जेल की कोठरी में आ जाती है, जहाँ वकील थॉमस ग्रे उसकी स्वीकारोक्ति लिख रहा है।
जी, और ग्रे का किरदार भी यहाँ अहम है। वो सिर्फ लिख नहीं रहा,
वो एक महत्वाकांक्षी वकील है, शायद इस कहानी से शोहरत चाहता है।
हाँ, और वो उस गोरे समाज का प्रतिनिधि है जो नेट की दुनिया, उसकी पीड़ा, उसके विद्रोह के कारणों को शायद कभी समझ ही नहीं सकता।
ग्रे कहानी को एक ढांचा देता है, पर नेट के अनुभव की सच्चाई तक नहीं पहुंच पाता।
सही, अपने आखिरी पलों में नेट सोचता है अपने कामों के मतलब के बारे में।
क्या वो दर्शन सच थे या आत्मधोखा?
हाँ, लेकिन वो पश्चाताप करने से साफ मना कर देता है।
अंत में उसे एक तरह की शांति मिलती है।
हाँ, एक अजीब सी जटिल शांति, शायद मार्गरेट से जुड़ा कोई आखिरी रहस्यमयी दर्शन होता है उसे। उसे कीमत पता है, लेकिन अपने मकसद की पवित्रता में उसका विश्वास बना रहता है।
हालांकि ये अंत भी विवादित रहा है।
जी, कुछ आलोचक मानते हैं कि स्टायरन यहाँ नेट को जबरदस्ती ईसाई पश्चाताप की तरफ ले जा रहे हैं, जो शायद ऐतिहासिक नेट टर्नर के विचारों से मेल नहीं खाता।
अगर हम उपन्यास के मुख्य विषयों पर आएं, तो सबसे पहले तो गुलामी की अमानवीयता ही है।
बिल्कुल, स्टायरन ये दिखाते हैं कि ये सिर्फ एक सामाजिक या आर्थिक व्यवस्था नहीं थी, ये एक नैतिक तबाही थी
जो गुलाम और मालिक दोनों को भ्रष्ट करती थी।
हाँ, ये आत्मा को कुचल देने वाली व्यवस्था थी, इंसानियत छीन लेने वाली।
दूसरा बड़ा विषय है धर्म।
हाँ, और वो यहाँ एक दोधारी तलवार की तरह है। एक तरफ वो नेट जैसे लोगों के लिए ताकत का, उम्मीद का स्रोत है, बाइबल उसे ज्ञान देती है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कैसे वही आस्था धीरे धीरे कट्टरता बन जाती है, कैसे बाइबल के शब्दों से हिंसा को जायज ठहराया जाने लगता है।
वही बाइबल जो धैर्य सिखाती थी, वही हथियार बन गई।
सही, और इसी से जुड़ा है उत्पीड़न का मनोविज्ञान, कैसे लगातार अन्याय इंसान की सोच को बिगाड़ सकता है, उसे अति पर ले जा सकता है।
और अच्छाई बुराई की वो धुंधली रेखाएं, कोई पूरी तरह अच्छा या बुरा नहीं है।
बिल्कुल, सवाल उठता है, क्या नेक मकसद के लिए भयानक साधन अपनाना ठीक है?
और फिर नस्ल, शक्ति, दमित भावनाएं, खासकर मार्गरेट वाले प्रसंग में।
हाँ, गुलामी के माहौल में इंसानी मनोविज्ञान का एक बहुत ही विवादित पर सोचने पर मजबूर करने वाला चित्रण।
और इन सब विषयों को पेश करने का स्टायरन का तरीका, वो प्रथम पुरुष का नजरिया।
हाँ, वो हमें सीधे नेट के मन में ले जाता है। हम दुनिया उसकी आंखों से देखते हैं, उसकी भावनाएं, उसके भ्रम, उसकी आस्था सब महसूस करते हैं।
हालांकि ये भी ध्यान रखना चाहिए कि फर्स्ट पर्सन नैरेटर अविश्वसनीय भी हो सकता है।
जी, हम उतना ही जानते हैं जितना नेट बताता है या याद करता है। स्टायरन की भाषा भी बहुत काव्यात्मक है, बाइबल जैसी लय है उसमें।
कहीं कहीं चेतना प्रवाह तकनीक का भी इस्तेमाल है, जैसे हम सीधे नेट के विचारों की धारा में बह रहे हों।
हाँ, उससे पाठक का अनुभव और गहरा होता है, और प्रतीकवाद भी है।
सूर्य ग्रहण, वो सांप, पानी।
जी, ये सब नेट की मानसिक स्थिति, उसके मिशन और आने वाले विनाश के प्रतीक है।
लेकिन इन साहित्यिक खूबियों के बावजूद वो विवाद।
हाँ, उस पर लौटना जरूरी है। पुलित्जर मिलने के बाद भी कई बड़े अश्वेत बुद्धिजीवियों, लेखकों ने स्टायरन की कड़ी आलोचना की।
सबसे बड़ा आरोप कल्चरल एप्रोप्रिएशन का, कि एक श्वेत लेखक कैसे एक अश्वेत नायक की आवाज बन सकता है।
बिल्कुल, और ये भी कि स्टायरन ने इतिहास को तोड़ा मरोड़ा, जैसे ऐतिहासिक नेट टर्नर शादीशुदा था, स्टायरन ने उसे ब्रह्मचारी दिखाया। और उसके विद्रोह की प्रेरणा को मार्गरेट व्हाइटहेड के प्रति दमित इच्छाओं से जोड़ दिया, जिससे उसके राजनीतिक और धार्मिक पहलू कमजोर हुए।
इस पर तो एक किताब भी आई थी, 10 Black Writers Respond।
जी, ये बहस सिर्फ इस किताब तक नहीं रही, इसने बड़े सवाल खड़े किए। इतिहास कौन लिखता है? किसकी आवाज प्रामाणिक है? कल्पना की आजादी कहाँ तक है?
खासकर जब आप किसी उत्पीड़ित समुदाय के नायक की कहानी कह रहे हो।
हाँ, इतिहास, कल्पना, प्रतिनिधित्व, ये सवाल आज भी उतने ही अहम हैं।
बिल्कुल, और ये विवाद जानना इस उपन्यास को समझने के लिए जरूरी है। भावनात्मक तौर पर देखें तो ये किताब पाठक को बहुत बेचैन करती है।
हाँ, आसान पढ़ना नहीं है बिल्कुल, नैतिक रूप से बहुत जटिल है।
स्टाइरन का नेट टर्नर, उसे सहानुभूति भी होती है, उसकी पीड़ा महसूस होती है,
लेकिन उसकी हिंसा, उसका नजरिया, वो डराता भी है।
उपन्यास कोई आसान जवाब नहीं देता, गहरे सवालों के साथ छोड़ देता है।
हाँ, पाठक को सहज नहीं होने देता, झकझोर देता है।
इसका स्थायी असर शायद इसकी अस्पष्टता में है, इसकी उदासी में।
जी, ये हिंसा, न्याय, इतिहास से हिसाब बराबर करने की मुश्किलों पर दर्दनाक सवाल खड़ा करता है।
ये दिखाता है कि कैसे व्यवस्था का उत्पीड़न आत्मा को जहरीला बना सकता है,
कैसे विश्वास कट्टरता बन सकता है और मुक्ति की इच्छा विनाशकारी हिंसा में बदल सकती है। ये इतिहास के सीधे साधे बयानों को चुनौती देता है,
जहाँ नायक और खलनायक साफ होते हैं।
हाँ, ये सोचने पर मजबूर करता है कि उत्पीड़न की हद क्या हो सकती है और प्रतिरोध की कीमत क्या।
सच कहा, ये उपन्यास हमें इतिहास के उन अंधेरे असहज कोनों में झांकने पर मजबूर करता है जिनसे हम अक्सर नजरें फेर लेते हैं।
ये दिखाता है कि व्यवस्था का अन्याय इंसान को किस हद तक तोड़ सकता है और किन भयानक रास्तों पर धकेल सकता है।
और आखिर में ये सवाल छोड़ जाता है कि क्या चरम दमन के सामने हिंसा कभी जरूरी हो जाती है? क्या वो नैतिक रूप से सही हो सकती है?
और अगर हाँ, तो उसकी इंसानी और आत्मिक कीमत क्या होती है? ये इतिहास की जटिलताओं और इंसान के मन की गहराइयों पर एक अविस्मरणीय, चुनौतीपूर्ण और निश्चित रूप से विवादित साहित्यिक चिंतन है।
यह संवाद यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।